ओम शांति। परम कलाकार परम पिता परमात्मा का दिव्य परिचय। आज सवेरे के सत्र में आप सभी ने आत्मा की विशेषता, आत्मा की वास्तविकता को समझा और जाना कि आत्मा किस प्रकार इस सृष्टि रंगमंच पर अपना पात्र निभाती है, किस तरह से आदि अनादि गुण स्वरूप होकर के सतयुग के आरंभ से लेकर आत्मा अपना पात्र निभाती है एक दिव्य स्वरूप में। और धीरे धीरे जैसे जैसे कलयुग आ जाता है, अनेक प्रकार की विकृतियां व्यक्ति के अंदर आ जाती है और वो आत्मा का पुनरुत्थान करने के लिए वो परम कलाकार को इस संसार में अवतरित होना पड़ता है। जैसे उन्होंने वायदा दिया है श्रीमद् भगवद गीता में, यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब संसार में अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है तो अधर्म का नाश और सत धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए वो परम कलाकार आकर के अपना पात्र भी निभाते हैं। लेकिन जब तक उसकी पहचान न हो तब तक जो उसे हम जीवन के अंदर प्राप्ति कर सके वो प्रैक्टिकल होता नहीं। इसलिए भी आवश्यक है कि हम उसको यथार्थ रीति समझें। जहां तक आत्मा का विषय आता है वहां तक तो फिर भी संसार में एक ही मान्यता है कि शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति है, जिसको किसी ने आत्मा कहा, किसी ने रूह कहा, किसी ने सोल कहा, किसी ने शक्ति कहा, किसी ने एनर्जी कहा। परंतु जहां परमात्मा का विषय आता है वहां आज संसार में अनेक मत मतांतर हो गए। किसी ने क्या कह दिया, किसी ने क्या कह दिया, और इसलिए आज मनुष्य ईश्वर को लेकर के बहुत कंफ्यूज स्टेज में है और जानना चाहता है कि आखिर भी वो परम सत्य क्या है, किसको परमात्मा कहे। कुछ समय पहले एक बहन मेरे सामने आई थी और कहने लगी कि उसका बेटा 16-17 साल का है और वो अपनी माँ से पूछता है, हिंदू धर्म में इतने भगवान क्यों है, क्रिश्चियन धर्म में गॉड क्यों है। वो माँ उस बच्चे को समझाने का प्रयत्न करती है कि हिंदू धर्म में ये सारे भगवान हैं। वो बच्चा कहता, भगवान तो एक होना चाहिए, इतने सारे भगवान थोड़ी हो सकते हैं, और अगर ये सारे भगवान हैं, तो इन सब का हेड कौन है। परिवार में भी एक हेड ऑफ द फैमिली होता है, इन सब का हेड कौन है। वो माँ अपने बच्चे के इस प्रश्न का जवाब नहीं दे पाती है और इसलिए जब भी वो माँ अपने बच्चे से कहती है, बेटा मंदिर चलो, कोई स्पेशल ओकेजन होता है या कोई त्योहार होता है, तो वो बच्चा मना कर देता है, यही कहते हुए कि मंदिर जाने के बाद आई गेट सो कंफ्यूज्ड, वेयर शुड आई फोकस माय माइंड। इसलिए वो बच्चा मंदिर नहीं जाता है। माँ को बड़ा दुख होता है कि मेरा बेटा नास्तिक होता जा रहा है, क्योंकि मैं शायद उसके प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाती हूं। लेकिन ये उसकी समस्या नहीं है, आज हर घर की ये समस्या हो गई है। विज्ञान का युग है और इसलिए हर घर के अंदर बच्चा पोता ये सवाल पूछता है कि आखिर भगवान कौन है, इतने सारे भगवान कैसे हो सकते हैं। दिन प्रतिदिन जितना ही उस सत्य को समझने का प्रयत्न करते हैं, कहीं उतना ही उस सत्य से दूर तो नहीं जा रहे हैं। और इसलिए आवश्यकता है कि आखिर भी उसको यथार्थ रीति हम समझे। एक बार हमने कार्टून देखा जिसमें एक व्यक्ति न्यूज़पेपर पढ़ रहा है और न्यूज़पेपर में जितनी कॉलम्स आती है, हर कॉलम में ईश्वर के बारे में कुछ न कुछ लिखा था। पहली कॉलम में लिखा था नेचर इज गॉड, प्रकृति परमेश्वर है। दूसरी कॉलम में लिखा था अहम ब्रह्मास्मि, आत्मा सो परमात्मा। तीसरी कॉलम में लिखा था ब्रह्म ईश्वर है। चौथी कॉलम में लिखा था ईश्वर सर्वव्यापी है, कहां नहीं है, सब में ईश्वर है, कण कण में भगवान है, तेरे में भी है, मेरे में भी है, सब में वो है। पांचवी कॉलम में लिखा था वो निराकार है, न नाम है, न रूप है, न आकार है। छठी कॉलम में लिखा था वो साकार है, जितने भी इष्ट देवी देवताएं हो गए सब परमात्मा के अवतार है। समय प्रति समय भगवान ने विभिन्न अवतार धारण किए। और नीचे बड़े अक्षरों में लिखा था देयर इज नथिंग लाइक गॉड, अगर सचमुच भगवान है तो कैन यू प्रूव इट। अब जो व्यक्ति ये न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, सारी कॉलम्स पढ़ने के बाद उसने क्या डिसीशन लिया होगा, व्हाट इज ट्रुथ, सत्य किसको कहा जाए, क्या ये सभी सत्य है, इसमें से एक सत्य है या सत्य कुछ और है जिसको अभी तक हमने पहचाना ही नहीं, क्या कहेंगे। तो सत्य को परखने की कोई कसौटी, क्योंकि जब ईश्वर को कहते हैं वो सत्य है, गॉड इज ट्रुथ, सत्य एक होना चाहिए। दस बातें हमारे सामने हो और हम कहें सभी सत्य है, इम्पॉसिबल, सत्य एक ही होता है। और ये सारी मतें भी जो है, सारी मतें एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है। क्या प्रकृति को परमेश्वर कहे या आत्मा को परमात्मा कहे, क्या ब्रह्म को ईश्वर कहे या कण कण में व्यापक है कहे, क्या निराकार को कहे या साकार को कहे या है ही नहीं कहे। कितना कंफ्यूजन है। और इसलिए ये सारे कंफ्यूजन होने के कारण आखिर भी जो सत्य है उसको पहचान ही नहीं पा रहा है। हर कोई अपनी मत को कन्विंस करने का प्रयत्न करता है, दिस इज द ट्रुथ। उसमें ही तो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं ईश्वर के नाम पर। तो सत्य को परखने की कोई कसौटी, जैसे एक झवेरी होता है उसके पास एक कसौटी रहती है जिस पर वह कसकर परखता है कि सोना कितना कैरेट का है, ठीक इसी तरह ईश्वर किसको कहा जाए उसको परखने की कोई कसौटी। आज ये नहीं कि ब्रह्मा कुमारियों ने एक और मत दे दी कि हमें उसको मानना है, नहीं, हम आपको मत नहीं देंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास बहुत सारी मतें हैं, ऑलरेडी आप कंफ्यूज स्टेज में हैं, हम और ज्यादा कंफ्यूज करना नहीं चाहते हैं। लेकिन आज हम आपको एक कसौटी देते हैं, जिस पर कसकर आप अपनी मत को देखो, क्या वो सत्य है? नहीं तो सत्य को प्राप्त करो। तो ये कसौटी है पांच बातें। सत्य किसको कहा जाए, ये परमेश्वर किसको कहा जाए, उसको परखने की पांच बातें हैं। पहली बात, ईश्वर उसको कहा जाता है जो सर्वधर्म मान्य हो, जिसको सभी धर्म वाले ईश्वर के रूप में स्वीकार करे, उसको कहेंगे सत्य। ये नहीं कि हिंदुओं का भगवान अलग है तो मुसलमानों का अलग है तो क्रिश्चियनों का अलग है। गॉड इज वन, सो ही शुड बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बाय ऑल द रिलीजियंस ऑफ द वर्ल्ड एज गॉड। दूसरा, परमेश्वर उसको कहेंगे जो सर्वोच्च शक्ति हो, जिसके ऊपर कोई नहीं होना चाहिए, जो सर्व का माता पिता बंधु गुरु शिक्षक रक्षक हो। उसका कोई माता पिता नहीं हो सकता है, नहीं तो वो उनसे श्रेष्ठ हो गए। उसका कोई गुरु नहीं हो सकता है, नहीं तो वो उनसे श्रेष्ठ हो गए। सुप्रीम अथॉरिटी, उसको कहेंगे परमेश्वर। तीसरा, परमेश्वर उनको कहेंगे जो सर्व परे हो, अर्थात मनुष्य आत्माएं संसार के अनेक चक्रों में आते हैं, जबकि परमात्मा इन सभी चक्रों से पर है। कौन से चक्र में आते हैं? मनुष्य आत्मा जन्म और मृत्यु के चक्र में आता है। परमात्मा के लिए कहा जाता वो अजन्मा है, अकाल मूरत है, जिसको काल कभी नहीं खा सकता है। तो जो जन्म और मृत्यु के चक्र से परे है, जिसने जन्म लिया उसने देह धारण किया, और देह है तो देह के संबंध है। परमात्मा देह और देह के संबंध के चक्र से परे, अजन्मा हो, अकाल मूरत हो, जिसने जन्म ही नहीं लिया उसने देह भी धारण नहीं किया। देह धारण जिसने भी किया तो उसने कर्म किया, कर्म किया तो कर्म का फल भोगना पड़ता। परमात्मा अकर्ता भोगता है, न कर्म करता है न फल भोगता है। तो जो कर्म और कर्म के फल के चक्र से ऊपर है। चौथा, जिसने कर्म किया वो कर्म या तो पाप कर्म होगा या पुण्य कर्म को होगा, तो पाप और पुण्य के चक्र में भी हम आते हैं, वो उससे परे है। अकर्ता है तो कर्म न पाप है न पुण्य है, और पाप और पुण्य के फल स्वरूप या तो सुख मिलता या दुख मिलता। तो सुख दुख के चक्र में भी हम आते हैं, परमात्मा इस चक्र से भी परे है। तो जो इन सभी चक्रों से पर हो उसको कहेंगे परमात्मा। जन्म मृत्यु के चक्र से परे, देह और देह के संबंध के चक्र से परे, कर्म और कर्म के फल के चक्र से परे, पाप और पुण्य के चक्र से परे, और सुख और दुख के चक्र से परे। चौथा, परमेश्वर उसको कहेंगे जो पर होते हुए भी सर्वज्ञ है, ज्ञाता है, जिसके पर के आदि मध्यांत का ज्ञान है, त्रिकालदर्शी जिसको कहा गया, तीनों कालों को जानने वाला, त्रिनेत्री मनुष्य को भी ज्ञान के दिव्य चक्षु प्रदान करने वाला, थर्ड आई ऑफ विजडम जिसको कहा जाए, देने वाला, और त्रिमूर्ति या त्रिदेव जो ब्रह्मा विष्णु महेश के भी रचयिता है उसको कहेंगे परमेश्वर। तो ये तीन की महिमा भी उसी के साथ लगती है, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, त्रिमूर्ति। और पांचवा परमेश्वर उसको कहेंगे जो सर्व गुणों में अनंत है, सर्वशक्तिमान है, जिसके लिए कहा गया सागर की स्याही बनाओ, जंगलों की कलम बनाओ, धरती का कागज बनाओ और स्वयं मां सरस्वती बैठकर ईश्वर की महिमा लिखे तो भी अपरंपार है जिसकी महिमा, अनंत है जिसकी महिमा, उसको कहेंगे परमेश्वर। ये पांच बातें हैं कसौटी, सर्वधर्म मान्य, सर्वोच्च शक्ति, सर्वोपरे, सर्वज्ञ और सर्व गुणों में अनंत, सर्वशक्तिमान। अब ये पांचों बातों ये किसके साथ लगती है? एक एक मत को अगर उठाते जाएं और इस कसौटी पर कसकर देखें, सत्य है। जब हम कहते हैं प्रकृति परमेश्वर है, तो क्या प्रकृति को सभी धर्म वाले ईश्वर के रूप में स्वीकार करेंगे? क्या कहेंगे? आपका विवेक क्या कहता है? नहीं करेंगे। क्या प्रकृति को सर्वोच्च शक्ति कहेंगे? किसी कवि ने बहुत सुंदर ये गीत की लाइन लिखी है, वो कौन चित्रकार है, वो कौन चित्रकार है जिसने प्रकृति का इतना सुंदर चित्र खींचा, वो चित्रकार कौन है? तो सत्य क्या है, प्रकृति ही परमेश्वर है या प्रकृति परमेश्वर की रचना है? What is the truth? आपका विवेक क्या कहता है? प्रकृति परमेश्वर की रचना है कहना सत्य है, राइट? तो प्रकृति को परमेश्वर मानना ये अज्ञान था, इट वॉज आउट ऑफ इग्नोरेंस। अज्ञानता के कारण हमने कह दिया सत्य तो नहीं है। सत्य तो यह है कि प्रकृति परमेश्वर की रचना है, उस चित्रकार का चित्र है। क्लियर? आगे बढ़े। दूसरी बात, जब हम कहते हैं कि हम ब्रह्मास्मि, आत्मा सो परमात्मा, हम ही परमात्मा है, ये कहां तक सत्य है? अगर हम ही परमात्मा हो तो फिर मंदिरों में जाकर के हमने ये क्यों गाया, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तुम मात पिता हम बालक तेरे। अब सत्य क्या है, हम ही परमात्मा है या हम उस परमात्मा की संतान है? आपका विवेक क्या कहता है? परमात्मा की संतान है कहना ठीक है? तो आत्मा सो परमात्मा कहना अज्ञान था, इट वॉज अगेन आउट ऑफ इग्नोरेंस जो हमने कह दिया। सत्य तो यह है कि हम उस परमात्मा के, उस मात पिता की संतान है। क्लियर? मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा उसको टाइटल मिलता है। किसी ने पुण्य का काम किया तो कहेंगे पुण्यात्मा है, किसी ने महान कर्म किया तो कहेंगे महात्मा है, किसी ने धर्म का काम किया तो कहेंगे धर्मात्मा है, किसी ने दिव्य कर्म किया तो कहेंगे देवात्मा है। तो आज संसार में देवात्मा अनेक है, महात्मा अनेक है, धर्मात्मा अनेक है, पुण्यात्मा अनेक है, पापात्मा अनेक है, लेकिन परमात्मा एक है। ग्रामर में परमात्माएं ये शब्द नहीं आता है, गॉड इज वन यही कहा गया है। और ये सब भी आत्माएं हैं, परमात्मा कोई नहीं है। पुण्य आत्मा, पुण्य परमात्मा नहीं कहा। महान आत्मा, महान परमात्मा नहीं कहा। धर्म आत्मा, धर्म परमात्मा नहीं कहा। देव आत्मा, दिव्य आत्माएं भी इस संसार में कितनी है। तो भारतीय शास्त्रों के हिसाब से 33 कोटि देवी देवताएं हैं, दिव्य आत्माएं हैं। तो दिव्य आत्माएं भी अनेक है, लेकिन परमात्मा एक है। देव परमात्मा भी नहीं कहा, देव आत्माएं कहा। कई बार कई लोग क्या सोचते, एक बड़ा परमात्मा था जिसके टुकड़े टुकड़े होकर के हम इस संसार में नीचे आए, और अंत में जाकर के फिर से उसमें विलीन हो जाना है, परमात्मा बन जाना है। एग्जाम्पल क्या देते हैं, जैसे सागर से बुदबुदा निकला और सागर में समा गया, ऐसे बड़ा परमात्मा था और हमको भी अंत में जाकर उसी में समा जाना है और परमात्मा बन जाना है। अब ये कहां तक सत्य है, सागर से बुदबुदा निकला और सागर में समा गया, ये संभव है, क्योंकि वो मैटर है। मैटर मैटर में समा सकता है, मैटर का टुकड़ा हो सकता है, मैटर का विभाजन हो सकता है, मैटर मैटर में मिल भी जाता है, लेकिन आत्मा या परमात्मा मैटर नहीं है। एग्जाम्पल दे तो बराबर का तो दे, एक शक्ति है, एक मैटर है। मैटर की कंपैरिजन शक्ति के साथ कहां से होती है। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय में जब कहा गया आत्मा अजर अमर अविनाशी है, अजर जर्जर भी नहीं होती है, अमर मरती भी नहीं है, अविनाशी जिसके अस्तित्व का कभी विनाश नहीं होता है। सागर से बुदबुदा निकला और सागर में समा गया, यानी बुदबुदे का अस्तित्व समाप्त तो हो गया, बुदबुदा बुदबुदा नहीं रहा, सागर बन गया। जबकि आत्मा अविनाशी है, जिसका न टुकड़ा होता है, इसीलिए उसको इलैबोरेट करते हुए कहा है कि आत्मा को प्रकृति के कोई भी तत्व प्रभावित नहीं कर सकते, न पानी उसको भिगो सकता है, न अग्नि उसको जला सकती है, न तलवार उसको काट सकती है, न हवा उसको सुखा सकती है। प्रकृति या कोई साधन आत्मा को प्रभावित नहीं कर सकते हैं, तलवार उसको काट नहीं सकती है, क्योंकि वो एनर्जी है, शक्ति है। शक्ति के लिए हमेशा यही कहा गया है, एनर्जी के लिए, एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। तो एग्जाम्पल तो बराबर का दे, कहां वो मैटर, कहां ये शक्ति, दोनों का कंपैरिजन ही नहीं है। तब कई बार कई लोग क्या कहते हैं, जिस तरह पुत्र पिता का अंश है, ऐसे आत्मा भी परमात्मा का अंश है, ये कहां तक सत्य है। अगेन पुत्र पिता का अंश है ये मैटर, पांच तत्वों का बना हुआ शरीर, शरीर एक शरीर का पांच तत्व का अंश हो सकता है, उसका टुकड़ा हो सकता है, लेकिन आत्मा जो अजर अमर अविनाशी है, वो परमात्मा का अंश कैसे हुआ। उसके वंश है, उसके बच्चे हैं, हम संतान है, ये कहना ठीक है। तो सत्य क्या है, आत्मा सो परमात्मा कहना ठीक है, या आत्मा परमात्मा की संतान है कहना ठीक है। आपका विवेक क्या कहता है, संतान है कहना ठीक है। तो तो आत्मा सो परमात्मा कहना अज्ञान है, गलत नहीं कहेंगे, इट वॉज आउट ऑफ इग्नोरेंस जो हमने मान लिया, अज्ञानता के कारण माना, बाकी वास्तविकता नहीं है। क्लियर हो गई ये बात? क्लियर? एनी क्वेश्चंस? नो। हाँ, उस बात पर आएंगे। आज सवेरे आप आए थे, हाँ? सवेरे बताया होगा आत्मा इटर्नल है, आत्मा का अस्तित्व है ही है, वो क्रिएट नहीं किया जाता, क्योंकि संसार में कोई भी चीज को जब क्रिएट किया जाता है तो उसका विनाश भी होता है। क्रिएशन है तो डिस्ट्रक्शन भी है, जबकि आत्मा अनादि है। अनादि माना जिसकी आदि और अंत नहीं है, इटर्नल, जो शाश्वत है, जो है ही है, उसको क्रिएट नहीं किया जा सकता है। क्लियर? तीसरी बात, जब हम कहते हैं ब्रह्म ईश्वर है, ये कहां तक सत्य है? अज्ञानता के कारण हम दो दो बातें करते रहे। एक तरफ कहा ब्रह्म ईश्वर है, दूसरी ओर कहते हैं पार ब्रह्म परमेश्वर। पार, पांच तत्वों की दुनिया से पार, ब्रह्म में निवास करने वाला ईश्वर। तो सत्य क्या है? ब्रह्म ही ईश्वर है कहना सत्य है, या पार ब्रह्म परमेश्वर है कहना सत्य है? आपका विवेक क्या कहता है? पार ब्रह्म परमेश्वर है कहना सत्य है। क्लियर हो गई बात? चौथी बात, जब हम कहते हैं कण कण में व्यापक है, कहां नहीं है, सब में ईश्वर है, ये कहां तक सत्य है? अगर कण कण में भगवान हो, तो एक व्यक्ति जब दूसरे का खून करता है, कोई गलत काम करता है, तो ये कर्म किसका, आत्मा का या परमात्मा का? क्या कहेंगे? आत्मा का। अगर ये कर्म आत्मा का है, तो उस वक्त परमात्मा क्या कर रहे थे? जो सब में विराजमान है, सब में ईश्वर बैठा है, आत्मा भी है, परमात्मा भी बाजू में बैठा है, तो उस समय परमात्मा क्या कर रहे थे? क्या परमात्मा की इतनी भी शक्ति नहीं है जो एक आत्मा को गलत कर्म करने से रोक सके? इतनी भी ताकत नहीं है, सर्वशक्तिमान है। आज घर में बच्चे होते हैं, और बच्चे अगर कोई बात को लेकर के आपस में लड़ाई झगड़ा करने लग जाए, माता पिता सामने बैठे हैं तो देखते रहेंगे या छुड़ाएंगे? क्या करेंगे? छुड़ाएंगे ना। एक शारीरिक माता पिता भी बच्चों को आपस में लड़ते हुए नहीं देख सकता है, तो परमात्मा है। दया का सागर, करुणा का सागर, प्यार का सागर है, और इतना मनुष्य गलत काम कर रहा है, और उसकी हाजिरी होते हुए भी वो कुछ नहीं करता है, तो उसका बैठने का कोई मतलब है? कोई मतलब? आज देखो, कोई बात हमें कहता है या बताता है, हमें मालूम नहीं होता है, तो हम क्या कहते हैं? ऊपर वाला जाने, छोड़ो ना, तुम क्यों झंझट में पड़ते हो, ये कहते हैं ना, ऊपर वाला जाने। अनजानेपन में भी यही निकला कि ऊपर वाला जाने, कभी ये कहा नीचे वाला जाने? सब में बैठा हुआ है वो जाने? अनजानेपन में भी सत्य यही निकलता है, ऊपर वाला जाने। तो ये ऊपर वाला कौन है, नीचे वाला कौन है? क्या वो दोनों एक ही है, या दोनों अलग है? और अधर्म के समय पर कौन आएगा? ऊपर वाला आएगा या नीचे वाला एक्शन में आ जाएगा? अनेक प्रश्न मन में खड़े हो जाते हैं, क्योंकि गीता में जब उसने कहा यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब मैं आता हूं, अगर वो यही है तो कौन आएगा? अगर वो यही है तो उसके होते इतना अधर्म कैसे? देखो, इसकी महिमा में भी हम लोग यही गाते हैं, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचे ते ऊंचा भगवन, जिसका धाम भी इतना ऊंचा है। ये तो नहीं कहा सब में जो विराजमान है वो नहीं। तो सत्य क्या है? क्योंकि कई बार कई लोग कहते हैं सर्वव्यापकता की बात भी तो शास्त्रों में ही आई, तो क्या शास्त्र गलत है? शास्त्र गलत नहीं है, लेकिन ये तो हो सकता है कि शास्त्र में जिस भाव से लिखा गया था उस भाव को हमने समझा ही ना हो, ये तो हो सकता है। शास्त्र में किस भाव से लिखा गया था? जैसे कोई बच्चा विदेश जाता है पढ़ने के लिए या कोई काम धंधे के लिए, और वहां से वो फोन करता है, उसकी माँ से बात करता है और माँ से पूछता है कि माँ तू मुझे याद करती हो? माँ क्या कहेगी? बेटा तुझे भूलते ही कब है, तू तो हमारे दिल में समाया हुआ है। यही कहते हैं ना। अब दिल में समाया का मतलब ये तो नहीं फिजिकली वो बैठा है, ये भावना है, एक भाव है कि भले फिजिकली तुम वहां है लेकिन तेरी याद हमेशा हमारे दिल में है। तो भावनात्मक तरीके से ये बात कही गई है। ईश्वर का निवास स्थान ऊपर है, लेकिन जब मनुष्य दुखी होता है, जब उस परमात्मा को याद करता है, तो उसके अंदर यही भाव प्रकट होता है जैसे कि वो हमारे दिल में, उसकी याद हमारे दिल में है। इसका मतलब ये नहीं कि फिजिकली वो वहां बैठा है, ये एक भाव है, राइट? अच्छा, दूसरी बात कि शास्त्र किसने लिखे? ऋषि मुनियों ने लिखे। और ऋषि मुनियों ने शास्त्र किस बेसिस पर लिखे? तो कहा जाता कि ऋषि मुनि तपस्या करते थे तो सिद्ध हो जाते थे, इतने सिद्ध हो जाते थे कि कई ऋषि मुनि दे वर एबल टू सी थ्रू टाइम, वो समय के अंतराल में देख सकते थे कि आने वाला कली काल जब होगा तो मनुष्य कितना घोर पाप करेगा। तब उन्होंने ये बात शास्त्रों में लिखी, क्योंकि वो जानते थे कि शास्त्रों की बात तो मनुष्य मानेगा। तब उन्होंने शास्त्र में ये बात लिखी कि हे मानव, तुम जब पाप करता है तो ये मत समझना तुझे कोई नहीं देख रहा है, ईश्वर सब जगह है, वो तुझे देख रहा है, ताकि मनुष्य को एक डर रहे कि भगवान मुझे देख रहा है, इसलिए मैं पाप नहीं करूं। आज से 500 साल पूर्व भी भारत के अंदर यही एक मान्यता थी कि लोग पाप करने से डरते थे। कोई अगर किसी को प्रेरित भी करता था, अरे कुछ नहीं होता ये पाप कर ले, तो क्या कहते थे? अरे बाल बच्चे वाला, समाज में रहना, इज्जत से जीना है, मैं ये पाप नहीं करूंगा, ऊपर वाला भी देख रहा है, मना कर देता था, राइट? लेकिन आज मनुष्य बड़ा हो गया, समझदार हो गया, आज उसको कोई कहता भी है अरे क्यों इतना पाप करता है, थोड़ा तो ऊपर वाले का डर रख, तो क्या कहता है? बाल बच्चे वाला हूं, वही डायलॉग, बाल बच्चे वाला हूं, समाज में रहना है, इज्जत से जीना है, पाप नहीं करूंगा तो सबका पेट कैसे भरूंगा। वो डर भी नहीं रहा। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, तो जब घुटना करना सीखता है तो घड़ी घड़ी घर से बाहर जाना चाहता है, भाई सब जा रहे, मैं भी जाऊं। और मां को उस वक्त बहुत सावधान रहना पड़ता है कहीं बच्चा बाहर ना निकल जाए, रास्ते पर ना चला जाए। तो मां क्या करती है, उसको दरवाजे तक ले जाती है। बाहर एक कुत्ता या गाय दिखाकर कहेगी, देख बाहर गए ना, कुत्ता उठा के ले जाएगा। और वो बच्चा उस बात को सत्य मान लेता है। और इसीलिए जैसे ही वो घुटने करते हुए दरवाजे तक जाता है, बाहर कुत्ता या गाय देखता है तो क्या करता है, वापस आ जाता है और इतना खुश होता है, आई एम सेफ, मैं बाहर नहीं गया, प्रकट करता है अपने भावों से। लेकिन वही बच्चा जब 10-12 साल का हो जाए, उसके बाद उसको कह के तो देखो कि बाहर गया तो कुत्ता उठा के ले जाएगा, क्या कहेगा? हंसेगा अपनी माँ पर, मेरी माँ इतनी भोली है, इतना भी नहीं समझती है, कुत्ता कोई उठा के ले जाने वाला है क्या? और हंसते हुए बाहर निकल जाता है और बाहर कुत्ते के साथ खेलने लगता है। और कभी कभी तो कुत्ते को उठाकर घर में ले आएगा, कहेगा लो मैं ही लेके आया हूं, वो क्या मुझे ले जाएगा। जिस बात को उसने सत्य मान लिया था, समझदार होने के बाद उस बात को स्वीकार नहीं करता है। ठीक इसी तरह आज से 500 साल पूर्व जिस बात को मनुष्य ने स्वीकार कर लिया था और डरता था पाप करने से, आज विज्ञान के युग में जब समझदार हो गया तो वो डर भी खत्म हो गया। और कोई अगर उसको कहता भी है, अरे क्यों इतना पाप करता है, भगवान तुझे देख रहा है, तो क्या कहता है, भगवान देखता क्यों है, वो तो सर्वशक्तिमान है, वो तो छुड़ाएगा ना, वो देखता क्यों है। वो डर भी नहीं रहा और पाप करता ही चला गया। तो शास्त्र की बातों को कहां माना, माना हा? कई बार कई लोग हमें कहते हैं ब्रह्मा कुमारियां शास्त्र को नहीं मानती है, अरे हम तो मानते हैं, हम तो उस बात को लेकर चलते हैं भावनात्मक स्वरूप से। क्या अगर बाहर अकेले जा रहे हैं, कोई हमें कहते बहन जी आप अकेले जा रहे हैं, हम कहेंगे नहीं, भगवान हमारे साथ है, यानी उसकी याद उसकी शक्ति हमारे साथ है, इस बात को लेकर के चलते हैं। लेकिन आज मनुष्य जो दुनिया में इतने पाप कर रहे हैं, क्या वो इस बात शास्त्र की इस बात को स्वीकार करते हैं कि भगवान मुझे देख रहा है, भगवान का डर है? तो शास्त्र को कौन नहीं मानता है, ब्रह्मा कुमारियां या दुनिया? दुनिया नहीं मान रही है उस बात को, तो शास्त्रों को नहीं मानती है। और उसके बावजूद भी कहते हैं कि नहीं, हम शास्त्रों को बहुत अच्छे से मानते, शास्त्र को मानते हैं, शास्त्र की नहीं मानते हैं, है ना? गीता को मानते हैं, गीता की नहीं मानते हैं। क्रिश्चियन बाइबल को मानते हैं, बाइबल की नहीं मानते हैं। हर धर्म वाले अपने धर्म शास्त्र को, धर्म पिता को जरूर मानते हैं, लेकिन उसकी कही हुई बातों को नहीं मानते हैं। भावार्थ ये कि अगर मानो तो समझ करके स्वीकार करो उस बात को, और समझ करके उस बात को स्वीकार करके आगे बढ़ो। तो सत्य क्या है? ईश्वर सर्वव्यापकता की बात जो है, भावनात्मक सत्य है या सिद्धांतिक? आपका विवेक क्या कहता है? सिद्धांतिक माना, ये माइक में परमात्मा है इसलिए बैठ के इसकी पूजा करूं, ये टेबल में परमात्मा है इसलिए बैठ के इसकी पूजा करूं, ये कुर्सी में परमात्मा है इसलिए बैठ के इसकी पूजा करूं, कि भाई सब में भगवान है, ये सिद्धांतिक हो गया जो अज्ञान है। तो ईश्वर सर्वव्यापी है, ये भावनात्मक सत्य है या सिद्धांतिक? भावनात्मक सत्य है, और उस भावनात्मक सत्य को हम भी स्वीकार करते हैं। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़े, पांचवी बात, जब हम कहते निराकार है, ना नाम है, ना रूप है, ना आकार है। अब नाम रूप आकार बिना संसार में कोई चीज है? हवा जो दिखाई नहीं देती है। लेकिन अगर एक चित्रकार को चित्र निकालना हो और उसको चक्रवात तूफान दिखाना है उस चित्र के अंदर, तो दिखा सकता है नहीं दिखा सकता है? कि चित्र को देखकर कहेंगे बड़ी तेज हवा चल रही है, ऐसा चित्र दिखाया है। और एकदम शांत प्रकृति दिखाना है तो जैसे हवा चल ही नहीं रही है, एकदम शांत है, वो चित्र के अंदर जो भाव है कि पूरा प्रतिबिंब तालाब के अंदर दिखा देता है, इतनी शांत प्रकृति है, हवा जैसे चल ही नहीं रही है। जो हवा का आकार नहीं है उसको भी एक चित्रकार अपने चित्र के अंदर ढाल देता है, तो नाम रूप आकार बिना इस संसार में कोई चीज है, तो क्या स्वयं रचयिता, वो सुप्रीम कलाकार नाम रूप आकार बिना होगा? हो ही नहीं सकता है। तो उसका नाम रूप आकार कौन सा है? जिस तरह एक पशु का पिता पशु है, पक्षी का पिता पक्षी है, मनुष्य का पिता मनुष्य है, तो आत्मा का पिता परमात्मा। आत्मा का स्वरूप कैसा है? ज्योति पुंज। इसीलिए व्यक्ति जब शरीर छोड़ता है तो ज्योत जलाई जाती है, सिग्निफाई करती है कि जो चैतन्य ज्योत थी इस व्यक्ति की, इसलिए फोटो के आगे ज्योत जलाई जाती है कि इस व्यक्ति की जो चैतन्य ज्योति थी वो चली गई, उड़ गई, उसकी यादगार में वो ज्योति जलाई। तो आत्मा का स्वरूप कैसा है? ज्योति पुंज, प्रकाश पुंज। तो उसके पिता का स्वरूप कैसा होना चाहिए? वो भी ज्योति पुंज है, प्रकाश पुंज है। जिसकी पूजा भारत में हिंदू धर्म में ज्योतिर्लिंगम के रूप में की गई, ज्योतिर्लिंगम माना जो ज्योति की आकृति है। ज्योति की पूजा कैसे करें? इसलिए भारतवासियों ने एक आकृति दे दी और उसको नाम दिया सदाशिव, जो सदा कल्याण करने वाले हैं। सदाशिव माना गुणवाचक नाम है, जो सदा सर्व का कल्याण करने वाले हैं। सदाशिव, शिव का मतलब है शांति। कहीं अशांति हो रही होंगी तो कहेंगे बोलो शिव शांति करो। तीसरा मतलब है शिव माना पवित्र। कोई छोटे बच्चे को आप देखेंगे तो कहेंगे शिव स्वरूप है। शिव स्वरूप यानी जैसे बच्चा प्योर है, परमात्मा एकदम एवर प्योर, परम पवित्र, परम पवित्र स्वरूप है। तो परमात्मा का जो नाम है वो भी गुणवाचक कर्तव्यवाचक है, तो उसका नाम भी है, उसका स्वरूप भी है, आकृति भी है। और इसलिए भारत के अंदर आज भी द्वादश ज्योतिर्लिंगम है, जो आज भी महान तीर्थ स्थान माने जाते हैं। जब व्यक्ति चार धाम की यात्रा पर निकलता है तो चारों धाम शिव के होते हैं, सोमनाथ, काशी विश्वनाथ, केदारनाथ और रामेश्वरम। शिव सारे शिव के मंदिर होते हैं। भावार्थ ये, द्वादश ज्योतिर्लिंगम आज भी महान तीर्थ स्थान माने जाते हैं। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, चारों दिशा में उसकी पूजा होती है। नॉर्थ में जाओ अमरनाथ के रूप में उसकी पूजा होती है, साउथ में जाओ तो रामेश्वर के रूप में उसकी पूजा होती है, ईस्ट में जाओ काशी विश्वनाथ के रूप में उसकी पूजा होती है, वेस्ट में जाओ सोमनाथ के रूप में उसकी पूजा होती है, है ना? और जितने भी मंदिरों के नाम है वो भी गुणवाचक कर्तव्यवाचक, और हर मंदिर का नाम या नाथ या ईश्वर में एंड होता है। अमरनाथ, बबुलनाथ, भोलेनाथ, सोमनाथ, विश्वनाथ, पशुपतिनाथ, या ईश्वर, रामेश्वर, गोपेश्वर, विश्वेश्वर, पापकटेश्वर, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, सारे शिव के मंदिर है। अनंत जिसके नाम है, अनंत गुणवाचक नाम है, कर्तव्यवाचक नाम है, और इसीलिए उनको कहा गया देवों का भी देव महादेव, जिसकी पूजा देवी देवताओं ने भी की। श्री राम के भी आराध्य कौन थे? शिव थे। तो श्री कृष्ण के भी आराध्य कौन थे? शिव थे। तो जितनी भी देवियां हैं भारत के अंदर, ये देवियों को कहा ही जाता है शिव शक्तियां। 51 पीठ है जो है देवियों के, ये सारी देवियां कौन थी? तो कहते हैं शिव शक्तियां, शिव की उत्पन्न की हुई शक्तियां। तो जो देवों का भी देव, देवियों का भी देव, वो है महादेव। लेकिन यहां भारतवासी एक गलती जरूर कर देते हैं, जो शिव और शंकर को एक कर देते हैं, मिला देते हैं। अरे जहां दोनों का नाम अलग है, शिव और शंकर, जहां दोनों की आइडेंटिटी अलग है, एक है निराकार ज्योतिर्लिंगम, ज्योति पुंज, प्रकाश पुंज, और एक है आकृति, ह्यूमन फॉर्म, तो एक है ज्योति स्वरूप आकृति, और एक है मनुष्य सदृश आकृति। तो नाम अलग है, स्वरूप अलग है, ऑक्यूपेशन भी अलग है। शिव को कहा भोलेनाथ, जो सबका कल्याण करने वाले हैं, सदा शिव। और शंकर के लिए कहते तीसरा नेत्र खुलता है तो महाविनाश, प्रलय हो जाता है। तो एक प्रलयनाथ, एक भोलेनाथ, नाम अलग, स्वरूप अलग, कार्य अलग, किस एंगल से दोनों एक हुए? जब भी भारत में कोई मंत्र देते हैं, ओम नमः शिवाय का मंत्र देते हैं, उसको ओम नमः शंकराय किसी ने जपा? एक है तो जपना चाहिए, नहीं जपते। भारत में शिवरात्रि मनाते हैं, महाशिवरात्रि 2 बार साल में आती है, शंकर रात्रि तो नहीं कहा ना? एक है तो कहना चाहिए, कभी शिवरात्रि कहो कभी शंकर रात्रि कह दो, नहीं कहा। शिव को कहते हैं त्रिदेव, अर्थात जो ब्रह्मा विष्णु महेश के क्रिएटर, तो एक रचयिता है, एक रचना है, एक कहा है। अमरनाथ जो पौराणिक कथा है वो यही कहती है कि अमरनाथ का महत्व इसलिए है कि वहां बैठकर अमरनाथ की कथा सुनाई थी। अब अमरनाथ और शंकर एक है या अलग है? तो यही कहना चाहिए अपनी कथा सुनाई, नहीं कहते हैं। शंकर ने भी पार्वती जी को अमरनाथ की कथा, तो दोनों अलग है, तभी तो उसने उसकी कथा सुनाई। कथा तो हमेशा दूसरों की सुनाई जाती है, अपनी तो कथा नहीं होती है, अपनी जीवन चरित्र होता है, अपनी आत्मकथा होती है, दूसरे की कथा है। तो जब शंकर ने भी पार्वती जी को अमरनाथ की कथा सुनाई तो अपनी जीवन कथा नहीं थी। इसीलिए कहा कि शंकर को भी हमेशा ध्यान मुद्रा में दिखाते, किसका ध्यान कर रहे हैं, यानी शंकर के भी आराध्य कौन? शिव। कैलाश पर्वत पर बैठ करके उसने भी किसका ध्यान किया? कैलाश। जो दुनिया का सबसे बड़े से बड़ा शिवलिंग है, पूरा पर्वत ही शिवलिंग आकार का है, वहां बैठकर शंकर ने भी उसका ध्यान किया, तो शंकर के भी आराध्य कौन हुए? शिव हुए। तो देवों के भी देव, इसीलिए शंकर को हमेशा पूरे परिवार सहित दिखाते हैं। मां पार्वती है, दो बच्चे हैं, गणेश जी और कार्तिकी, और सारा परिवार मिलकर के शिव की पूजा कर रहा है। ऐसे चित्र देखे हैं आपने? सारा परिवार मिलकर के पूजा कर रहा है शिव की। तो ये हुई भारत की बात, हिंदू धर्म की बात। भारत से बाहर जाओ, इस्लाम धर्म में कहा जाता है कि मक्का जब जाते हैं तो वहां काबा का पवित्र पत्थर है, और इस पवित्र पत्थर के पीछे कहानी है। कहानी ये है कि मक्का में पहले 360 देवी देवताओं की मूर्तियां होती थी, परंतु मोहम्मद पैगंबर साहब जब आए तब उन्होंने कहा अल्लाह एक है। काफी मतभेद हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ, उनको मदीना भेज दिया गया, वहां जाकर के ये प्रचार करो, यहां नहीं। और फिर उसके बाद जो है, कहा जाता है एक आकाशवाणी हुई और ये पवित्र पत्थर ऊपर से गिरा मक्का में, और मोहम्मद पैगंबर साहब ने खुद अपने हाथों से अपने चार लोगों के साथ मिलकर के उसकी स्थापना मक्का में की, और तब से लेकर के ये मान्यता हुई जीवन में एक बार ये पवित्र पत्थर का दर्शन अवश्य करना चाहिए, तभी जीवन सफल हुआ, नहीं तो सफल नहीं हुआ। इसलिए हर साल उनकी हज यात्राएं निकलती है। हज में भी हर कोई नहीं जा सकते हैं, हज में जाने के नियम बहुत कड़े हैं, लेकिन जो हज में जाता है वहां जाने के बाद क्या करता है? अपने पापों का प्रायश्चित करता है। फिर वहां एक पिल्लर होता है जिसको वो शैतान कहते हैं, और शैतान को पत्थर मारते हैं, ये पवित्र पत्थर को चूमते हैं, सात बार परिक्रमा करते हैं। सात बार परिक्रमा सिर्फ हिंदू धर्म में होती है और सिर्फ मक्का में होती है और कहीं नहीं होती है। और फिर ये पत्थर को चूम करके अंतिम अपनी बंदगी जो करते हैं उसमें यही कहते हैं, हे परवरदिगार, परमेश्वर को कहा, हे परवरदिगार, नूरे इलाही, मेरा हज कबूल हो, कबूल हो, कबूल हो, तब वो हज कबूल होता है। नूरे इलाही का मतलब है अल्लाह नूर है। नूर माना तेज प्रकाश, ज्योति माना तेज प्रकाश। हिंदुओं ने ज्योतिर्लिंगम कहा, उन्होंने नूर कहा, बात एक ही है या अलग है? एक ही तो है। और आगे जाए तो मोसेस जब माउंटेन पर गए जहां उन्हें 10 कमांडमेंट्स मिले, उस समय मोसेस पूछते हैं वो डिवाइन लाइट को कि मैं जब ये 10 कमांडमेंट्स लेकर नीचे जाऊंगा, लोग मुझे पूछेंगे किसने दिया, कम से कम आपका परिचय तो मुझे हो, आप कौन हो? तो उसने कहा यहोवा। यहोवा का मतलब है द सुप्रीम लाइट। इसलिए जीसस ने कभी अपने आप को गॉड नहीं कहा, उसने हमेशा यही कहा, गॉड इज लाइट, आई एम द सन ऑफ गॉड। और इसलिए आज भी अगर वेटिकन चले जाओ, जो सबसे बड़ा तीर्थ माना जाता है क्रिश्चियनों का, उस वेटिकन के अंदर किसी व्यक्ति की प्रतिमा नहीं मिलेगी, लेकिन अखंड ज्योति स्वरूप लाइट का सिंबल मिलेगा, जिसको क्रिश्चियनों ने लाइट कहा, मुसलमानों ने नूर कहा, हिंदुओं ने ज्योति कहा, बात एक ही है या अलग है? और आगे जाए, गुरु नानक देव ने बड़े क्लियर शब्द में उसकी महिमा गाई है, जितना स्पष्ट और किसी ने नहीं किया, एक ओमकार निराकार निर्वैर सत नाम, वही एक सत्य नाम है। अकाल मूरत जिसको काल कभी नहीं खा सकता है, अजोनी जो किसी योनियों में नहीं आता है, वही सच्चा पातशाह है। और कहा एक नूर, इसीलिए गुरु गोविंद सिंह जी ने भी शिव की महिमा गाई थी। और आगे जाए, महात्मा बुद्ध ने कभी मूर्ति पूजा की और किसी को प्रेरित नहीं किया, लेकिन वो भी ध्यान मुद्रा में है। किसका ध्यान कर रहे हैं? आज भी अगर जापान चले जाओ तो 3 फुट की ऊंचाई पर और 3 फुट दूर बैठ के एक थाली के अंदर लाल पत्थर रखा जाता है जो बिल्कुल शिवलिंग आकार का होता है, जिसको कहा गया चिंकुन शिकी। चिंकुन शिकी का मतलब है जो शांति का दाता है, जिसका ध्यान करने से हमारा मन शांत हो जाता है। या अखंड ज्योति को, उस प्रकाश को वो परमात्मा मानते हैं। भावार्थ ये कि महात्मा बुद्ध ने भी ध्यान किसका किया? उस ज्योति का ध्यान किया, परम प्रकाश का ध्यान किया, जिसका ध्यान करने से उनका मन शांत हो जाए। उसने मूर्ति पूजा में किसी को प्रेरित नहीं किया, कर्म अच्छा करने के लिए जरूर प्रेरणा दी, कर्म ही धर्म है ये बताया कि अच्छे कर्म करो। और आगे जाए, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हैं, 24 के 24 तीर्थंकर ध्यान मुद्रा में है, आदिनाथ से लेकर के महावीर स्वामी तक, सभी ध्यान मुद्रा में किसका ध्यान कर रहे हैं? कभी भी आप जैन मंदिर में जाकर के अगर वहां के लोगों से पूछेंगे कि भई ये किसके, ये 24 तीर्थंकर किसका ध्यान कर रहे हैं, तो कहते सिद्ध शिला का। सिद्ध शिला माना जो सर्वश्रेष्ठ है, उसका ध्यान किया। और वो सर्वश्रेष्ठ कौन है? निराकार है, यही कहा जाता है, जो निराकार है, जिसकी कोई फिजिकल आकृति नहीं है। फिजिकल आकृति नहीं इसलिए निराकार कहा गया। जिस तरह परमात्मा की एक महिमा है निर्गुण, निर्गुण का शाब्दिक अर्थ अगर लिया जाए तो जिसमें कोई गुण नहीं, लेकिन परमात्मा तो गुणों में अनंत है। फिर निर्गुण किस भाव से कहा गया? तो प्रकृति के 3 गुण, सात्विक, राजसिक और तामसिक, इन 3 गुणों के प्रभाव से जो परे है उसको कहा निर्गुण। ये 3 गुणों का प्रभाव उसको प्रभावित नहीं कर सकता है, तामसिक नहीं बन सकता है, उसके प्रभाव से जो परे है, तब कहा निर्गुण। तो निराकार माना जो शारीरिक आकृति से परे है, लेकिन उसका अपना स्वरूप तो है, वो ज्योति स्वरूप, प्रकाश पुंज, तो उसी को ही निराकार स्वरूप कह दिया। तो सर्व धर्म मान्य, और आगे जाए पारसी धर्म में कहा जाता है कि पारसी लोग जब ईरान से भारत आए थे तो जलती हुई ज्योत को लेकर के आए थे, और आज भी उनके मंदिर को कहा ही जाता है द फायर टेम्पल, जहां अखंड ज्योत निरंतर जलती रहती है। तो सर्व धर्म मान्य कौन है? एक ही है, भले नाम अलग अलग दिए सभी ने, जैसे आपको कोई पिताजी कहे, भाई कहे, चाचा कहे, ताऊ कहे, मामा कहे, जो भी नाम से पुकारे, लेकिन स्वरूप तो एक ही होगा या हर बार बदली हो जाएगा? एक ही होगा। ऐसे परमात्मा को किसी ने गॉड कहा, अल्लाह कहा, ईश्वर कहा, प्रभु कहा, मालिक कहा, साईं बाबा ने क्या कहा? सबका मालिक एक। साईं बाबा ने कभी नहीं कहा मैं भगवान हूं, सबका मालिक है, उसको याद करो। तो फिर हम लोग रास्ता भूले कहां से, जब सबने एक की ओर इशारा किया, उसी की ओर अंगुली उठाई कि वही परमात्मा है, वही मालिक है, वही ईश्वर है, प्रभु है, गॉड है, अल्लाह है। जब सबने उसकी ओर उंगली दिखाई तो हम रास्ता भूले कहां से कि जो उन्होंने रास्ता दिखाया उसके बदले उसको ही भगवान मान करके उसकी पूजा करने लगे। साईं बाबा ने कहा सबका मालिक एक, हम सबका मालिक एक, उसको छोड़ करके साईं बाबा की पूजा करने लग पड़े। देवी देवताओं ने पूजा करके, श्री राम ने दिखाया प्रैक्टिकल कि मैं भी शिव की पूजा कर रहा हूं, जिसकी वो पूजा कर रहे उसको छोड़ करके हम श्री राम की पूजा करने लग पड़े। जिन शिव शक्तियों ने भी कहा वो शिव सर्वशक्तिमान है, हम उस सर्वशक्तिमान को छोड़ करके 51 पीठों में जाकर के हाँ चक्कर लगाने लगे। तो हम लोग रास्ता भूले कहां से और कैसे भूल गए, जब सबने एक ही बात कही तो फिर ये अंतर कहां से आ गया हमारे अंदर, भटक कैसे गए हम। जो आज कहा जाता है हर जो भटकना है उसको छोड़ करके उसी एक की ओर जाएंगे या नहीं जाएंगे, जाना ही होगा, जाना ही होगा, तभी सत धर्म सनातन धर्म की ओर हम कदम आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो अधर्म की ओर ही आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो इसलिए आवश्यकता है सत्य को समझ करके सत्य को ही सनातन कहा, सनातन सत्य। तो उस सत्य को जब तक समझा नहीं तब तक सनातन कैसे हुए, भटक रहे हैं, कोई कहां जा रहा है, कोई कहां जा रहा है, कोई कहां जा रहा है। तो इसीलिए अब ये सारे भटकाव को छोड़ करके एक सनातन सत्य की ओर, उस परम कलाकार की ओर, उसको यथार्थ पहचान करके उसी की ओर आगे बढ़ना, यही धर्म है, यही धर्म है, अर्थात यही हमारी जीवन की धारणा होनी चाहिए। तो सर्व धर्म मान्य, दूसरी कसौटी सर्वोच्च शक्ति। इसलिए शिव के साथ एक शब्द जुड़ता है, शिव शंभु। शंभु का ओरिजिनल शब्द है स्वयंभू, जिसको उत्पन्न करने वाले कोई माता पिता नहीं है। शिव के माता पिता है कोई, कोई कथा में सुना, कोई पुराणों में सुना कि शिव के माता पिता कौन है, है ही नहीं। जो स्वयंभू है, जो स्वयं प्रकट हुआ है, इसीलिए कहा कि मैं स्वयं अवतरित होता हूं अधर्म के समय पर, अधर्म का नाश और सत धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए। तो सर्वोच्च शक्ति है जो स्वयंभू है, जो सभी चक्रों से पर है। जब स्वयंभू है, जन्म ही नहीं लिया तो मृत्यु भी नहीं है, इसलिए उसको महाकालेश्वर कहते हैं, जिसको काल कभी नहीं खा सकता। जो अमरनाथ है, मरता भी नहीं है, अमर है। तो जो जन्म और मृत्यु के चक्र से पर है, जो देह और देह के संबंधों के चक्र से भी पर है, कोई देह दिखाई नहीं उसकी, उस लिंग स्वरूप में ही, ज्योति स्वरूप में ही पूजा होती है। तो देह और देह के संबंधों के चक्र से भी परे, जब देह ही नहीं है तो कर्म भी नहीं किया, कर्म नहीं किया तो कर्म का फल कहां से भोगेंगे, तो अकर्ता भोगता है। और इसीलिए पाप और पुण्य से भी परे हैं और सुख दुख से भी परे हैं। तभी तो शिव को कहा जाता हरि, अर्थात सर्व के दुख को हरने वाला, सुख देने वाला हरि उसको कहा गया। ये उसकी महिमा गाते हैं। तो सभी चक्र से जो ऊपर है पर है, लेकिन पर होते हुए भी सर्वज्ञ, चौथी बात, तो शिवलिंग के ऊपर तीन लकीर लगाई जाती है, और ये तीन लकीर यानी जो आदि मध्य अंत का ज्ञाता है, तीनों कालों को जानने वाला त्रिकालदर्शी है। वो तीन लकीर के बीच में एक आंख होती है, अर्थात मनुष्य को भी ज्ञान के दिव्य चक्षु प्रदान करने वाले त्रिनेत्री है, थर्ड आई ऑफ डिवाइन विजडम देने वाले हैं। और उसकी पूजा में तीन पत्र का बैल पत्र चढ़ता है, जो दंडी से जुड़ा होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए, अर्थात जो ब्रह्मा विष्णु महेश के भी रचयिता है, त्रिदेव है, क्रिएटर है। इसलिए ये तीनों देवताओं का भी जन्म नहीं दिखाता है, दिखाते हैं। ब्रह्मा कहां से पैदा हुआ, तो कहा विष्णु के नाभि कमल से आया। अच्छा, विष्णु कहां से आया, तो कहते ब्रह्मा की नाभि कमल से। कौन पहले आया, कौन बाद में आया, नाभि कमल से निकलना यानी वन आफ्टर दी अदर। जैसे एक चित्र देखा था हमने, गांधी की नाभि कमल से नेहरू निकला, नेहरू की नाभि कमल से शास्त्री निकला, और शास्त्री की नाभि कमल से इंदिरा जी निकले, वन आफ्टर दी अदर। तो ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, वन आफ्टर दी अदर। और शंकर कहां से आए, तो कहते ये तीनों देवताएं, उनकी रचना ओम से हुई या प्रकाश से हुई, तीनों की उत्पत्ति होती है, तीनों की उत्पत्ति उस परम प्रकाश से हुई। तो ये तीन देवताओं की उत्पत्ति हुई और शिव का अवतरण होता है, तो उत्पत्ति और अवतरण में अंतर है। अवतरण परमात्मा का है, उत्पत्ति देवताओं की है, और बाकी जितने भी देवी देवताएं हैं उन सबका जन्म है। श्री कृष्ण का जन्म हुआ, श्री राम का जन्म हुआ, हरेक का जन्म दिखाते हैं, किसी किसी देवताओं की उत्पत्ति दिखाते हैं। भावार्थ ये कि अवतरण सिर्फ एक का होता है, स्वयंभू सिर्फ एक है, और इसीलिए ये तीनों देवताओं का महत्व हर धर्म में भी है। हिंदू धर्म में जिसको ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा द्वारा सृजन, विष्णु द्वारा पालना, और शंकर द्वारा महाविनाश, करण करावन हार कौन, परमात्मा। करण करावन हार खुद नहीं करता है, कराता है। तो ये तीन देवताओं के द्वारा सृष्टि के तीन कर्तव्य कराने वाला परमेश्वर, पुरानी सृष्टि का महाविनाश, नई सृष्टि का सृजन, और उस नई सृष्टि की पालना का कार्य, ये हिंदू धर्म में दिखा है। इस्लाम में दिखाते हैं जिब्राइल, मिकाइल, इसराफिल। जिब्राइल माना जो सबक देने वाला, ज्ञान देने वाला, मिकाइल यानी जो रोजी रोटी देने वाला, पालना करने वाला, और इसराफिल माना जो कयामत लाने वाला। तीन देवताओं के वहां पर भी महत्व दिखाया है। तो क्रिश्चियन धर्म में देखो तो थ्री होली एंजल्स कहते हैं, या थ्री होली गोस्ट कहते हैं, जिसको कहा जीओडी गॉड, जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर। और उसके बाद गुरु नानक देव ने कहा एक संसारी, एक भंडारी, एक लाए दीवान। तो तीनों मूर्तियों का महत्व हर धर्म में भी है। तो परमात्मा स्वयं करण करावनहार है, ये करणहार है। और सर्व गुणों में अनंत सर्वशक्तिमान परमात्मा के मंदिरों के नाम भी गुणवाचक कर्तव्यवाचक है। तो गुणों में अनंत इन्फिनिट इन हिज क्वालिटीज। तो ये था परमात्मा का संपूर्ण परिचय। जब किसी का परिचय लेते हैं तो पांच बातें पूछी जाती है, आपका नाम क्या है, फिर आइडेंटिटी के लिए आधार कार्ड चाहिए, वही है या दूसरा फोटोग्राफ होता है जिसके ऊपर, है ना। तीसरा क्वालिफिकेशन, चौथा एड्रेस और पांचवा प्रेजेंट ऑक्यूपेशन। ये पांच बातों में संपूर्ण परिचय आ जाता है। तो आज परमात्मा के परिचय में भी हमने ये पांचों बातें देखी, जिसका नाम है सदाशिव, गॉड, अल्लाह, ईश्वर, प्रभु, मालिक, जो भी को उसका स्वरूप है, निराकार ज्योति स्वरूप, प्रकाश पुंज, अनंत तेजोमय, दिव्य प्रकाशमान, लाइट, नूर, एक नूर, अखंड ज्योति स्वरूप, जो भी कहो, एक ही दिखाया है। उसके क्वालिफिकेशन पांच बातें, सर्वधर्म मान्य, सर्वोच्च शक्ति, सर्वोपरे, सर्वज्ञ और सर्व गुणों में अनंत, ये उसकी क्वालिफिकेशन है। और एड्रेस ऊपर वाला, ऊपर वाला कहाँ रहता है, परम धाम में, शांति धाम में, जिसको हर धर्म में अलग अलग नाम दिए गए। किसी ने कहा ब्रह्म लोक, किसी ने कहा पार निर्वाण, किसी ने कहा सातवां आसमान, किसी ने कहा हेवनली अबोर्ड, अलग अलग नाम दिए गए हैं, वो उसका एड्रेस है। और उसका प्रेजेंट ऑक्यूपेशन, यदा यदा ही धर्मस्य, है ना, जब जब धर्म की अति ग्लानी होती है तब तब अधर्म का नाश कराना और सत धर्म की पुनः स्थापना कराना, ये परमात्मा का दिव्य कार्य है, जो खुद करता नहीं कराता है। ये तीन मूर्तियों के द्वारा करण करावनहार वही है, ठीक है। तो अब तो अगर आपके घर में आपका पोता या आपका बच्चा आपसे पूछे ये सभी का हेड कौन है, सत्य क्या है, तो बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं, बता सकेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं, क्लियर हो गया, हाँ, तो बाद में आप मेरे से मिल लेना, पूछ ले, हाँ, वो इसीलिए कि निराकार स्वरूप, लिंग माना आकृति, तो ज्योति की आकृति, शिवलिंग या ज्योतिर्लिंगम, लिंग माना आकृति, जैसे ग्रामर के अंदर पुलिंग स्त्रीलिंग आता है, यानी पुरुष की आकृति स्त्री की आकृति, तो इसी तरह ज्योतिर्लिंग माना जो ज्योति की आकृति, ज्योति की पूजा कैसे करें, इसलिए भारतवासियों ने एक आकृति दे दी जिसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, जो एक लिंग स्वरूप में है, तो इसलिए उसको ज्योतिर्लिंगम कहा, ठीक है। तो अभी कोई कंफ्यूजन नहीं, अभी तो ध्यान लगेगा या नहीं लगेगा, अब तक तो हम ये कहते रहे भगवान में ध्यान नहीं लगता है, मन भटक जाता है, मन बड़ा दुष्ट है, पापी है, मन को क्यों दोष देते हैं, मन खराब नहीं है, जब उसके पास ज्ञान है ही नहीं तो बेचारा भटकेगा ना, इसलिए भटक रहा था, अब तो स्थिर हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो दिव्य स्वरूप परमात्मा का ज्योतिर्लिंगम, प्रकाश पुंज, दिव्य प्रकाशमान, तेजोमय स्वरूप, और जब उसको याद करते हैं, प्रेम से याद करो, उसके गुणों के आधार पर, मांगना नहीं, हे प्रभु शक्ति दे दो, ये दे दो, वो दे दो, मांगना नहीं, इसलिए कहावत है, बिन मांगे मोती मिले, मांगत मिले न भीख। जैसे बाहर सूरज के सामने खड़े हो जाओ, सूर्य से आप मांगते नहीं हो कि सूर्य तेरी गर्माइश मुझे दे, आप खड़े रहो उसके कांटेक्ट में आओ, वो गर्माइश इतनी प्राप्त होने लगेगी कि थोड़ी देर में आपको पसीना निकलने लगेगा। समुद्र के पास खड़े रह करके समुद्र से मांगते नहीं है कि समुद्र तेरी शीतल हवा मुझे दे, खड़े रहो मिलेगी, है ना। ठीक इसी तरह उसके कांटेक्ट में आओ तो आपको अपने आप मिलने लगेगी। ऐसे ही स्वयं को आत्मनिश्चय करके उस परमात्मा में ध्यान को एकाग्र करो, उस दिव्य स्वरूप पर अपने ध्यान को एकाग्र करो, मांगने की जरूरत नहीं है, अपने आप मिलने लगेगी। जो चाहिए आत्मा को वो अपने आप उस चीज को समाता जाएगा अपने अंदर, ठीक है। तो ध्यान सहज हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आत्मनिश्चय, स्वयं को देह समझेंगे, मैं फलाना हूं फलाना, तो ईश्वर में ध्यान नहीं, सबसे बड़ा बैरियर सामने आ जाता है जिसके कारण लग नहीं सकता है ध्यान। तो उसके लिए स्वयं को आत्मनिश्चय करके बैठो, मैं भी ज्योति पुंज हूं और वो परमात्मा अनंत प्रकाशमान है, फिर देखो ध्यान कितना सहजता से लग जाते हैं, ठीक है। तो चलिए थोड़ी देर के लिए परमात्मा स्मृति में मन को एकाग्र करेंगे। स्वयं को इस देह में चैतन्य शक्ति आत्म स्वरूप में देखो अंतरचक्षु से। महसूस करो ब्रुकुटी के मध्य में मैं ज्योति पुंज प्रकाश पुंज आत्मा हूं। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूं। धीरे धीरे अपने मन को ले चलते हैं एक यात्रा पर, परमात्मा के सानिध्य में पंचतत्व की दुनिया से दूर सूर्य चंद्र तारागण से भी पार। पार ब्रह्म में जहां चारों ओर दिव्य प्रकाश छाया हुआ है, अंतर चक्षु से उस दिव्य लोक में देखो अनंत प्रकाशमान दिव्य तेजोमय स्वरूप को। मैं आत्मा ज्योति पुंज हूं और मेरे पिता परमात्मा अनंत प्रकाशमान है। मैं जो गुणों में अनंत है, सर्वशक्तिमान है। सर्व शक्तियों की किरणों को मैं स्वयं में समाती जा रही हूं। परमात्मा शक्ति के ऊर्जा से मैं आत्मा सशक्त होती जा रही हूं। परमात्मा शक्ति की ऊर्जा से मुझ आत्मा का जन्म जन्म के मैल को धुल रहा है और मैं आत्मा स्वच्छ होती जा रही हूं। मेरे चारों ओर दिव्य आभा का प्रभा मंडल देख रही हूं। परमात्मा शक्ति की ऊर्जा से इस प्रभा मंडल को स्वच्छ सशक्त करती जा रही हूं। वो शांति का सागर है, उसकी शांति की ऊर्जा से मन शांत शीतल होता जा रहा है। मेरे पिता परमात्मा परम पवित्र है। परमात्मा की पवित्रता की किरणों से मैं आत्मा शुद्ध पवित्र बनती जा रही हूं। मन शांत शीतलता के प्रवाह में कितनी शांति है। मेरे चारों ओर शांति का प्रवाह महसूस कर रही हूं। शांति की शक्ति परमात्मा स्मृति से मैं आत्मा सत्चित आनंद स्वरूप स्वयं को महसूस कर रही हूं। कितना सुंदर और दिव्य रूप है धीरे धीरे मन और बुद्धि को वर्तमान में स्थित करती हूं। ओम शांति।